गांव में पहुंचा और वहां आकर उसने देखा कि उसका जो कोट है शर्ट उसकी एक बटन टूट गई। तो उसने मंत्री से कहा कि देखो इस गांव में कोई दर्जी कोई टेलर है कि तो उस गांव में एक ही टेलर एक ही दर्जी थे। वो आए और उसको राजा ने कहा क्या तुम मेरा ये काम करो। उसने कहा क्यों नहीं। और कुछ ही देर में उसने दो टांके लगाए और वो बटन सी थी। राजा ने पूछा इसका क्या दाम हुआ। वो सोचने लगा कितना बताऊं बटन भी राजा की मेरा तो केवल धागा था। वो सोचता है कि वो कहता है नहीं नहीं इसका तो कोई पैसा नहीं कुछ नहीं। वो कहता है नहीं राजा कहता है बताओ कितना हुआ। तो वो सोच में पड़ जाता है कितना बताऊं। सोचता है अगर मैं ज्यादा बताऊं तो ये राजा सोचेगा कि ये राजा से ही इतना ज्यादा लेता है तो बाकी लोगों से क्या करता हूं। फिर सोचता है कम बताऊं फिर सोचता है ज्यादा बताऊं फिर लास्ट में फाइनल करता है कि मैं बताता हूँ कि 2 रुपए। तो वो राजा से कहता है कहते समय हिम्मत नहीं होती ये बोलने की। कहता है जो भी आप दोगे वो मैं ले लूंगी। तो अब बात राजा पर आ गई। अब निर्णय राजा को करना है तो राजा तो अपनी प्रतिष्ठा देखेगा इसने किसका बटन सिलाया। सारी दुनिया भी तो याद रखे। राजा मंत्री से कहता है इस दर्जी को 2 गांव दे दो। 2 गांव कहां तो वो 2 रुपए सोच रहा और कहां तो राजा ने 2 गांव दे दिए। पर वो कब दिए जब उसने 100 दिया। जब उसने समर्पण कर दिया और जब आत्मा परमात्मा के सामने समर्पण कर देती है, तो जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था, उससे कई 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 गुना हमको मिल जाते। और यदि हम मांगते ही रहे तो शायद शायद वो नहीं मिल पाएगा जो हमने मांगा भी। आत्मा को जितने को मिली है, यदि आत्मा इस देह को अर्पित कर दे उसके प्रति जिसने ये दी है, तो भगवान कई गुना अधिक हमको दे देगा। यदि ये जो शरीर मिला है इससे आत्मा विकर्म ही करती रहे तो वो भी नहीं मिलेगा जो चाहिए। परंतु यदि आत्मा इस देह को उसके कार्य के प्रति, उसकी दिव्य श्रीमत के प्रति, उसने सिखाई हुई तपस्या के प्रति अर्पित कर दे, तो वो दो युग का राज्य दे दे। मुरलियों में शब्द आता है, वाक्य आता है, और प्रीति कपड़ दो, सिख लिटरेचर से लिया हुआ शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के द्वारा कहा हुआ शब्द वाक्य है कि भगवान धोबी बनकर आता है और आत्मा रूपी वस्त्र को धोता है जो कि मलिन हो चुका है, दाग लग चुके हैं उसे। जैसे संसार में वो धोबी होता है, वो कभी ऐसा कहता है कि इतने खराब क्यों कर दिए कपड़े, उसके सामने कपड़े लेके जाके रखो तो कभी ऐसा पूछता है कि इतने खराब क्यों कर दिए, पूछता है नहीं पूछता। जो भी कपड़े उसके पास आते हैं वो उसको धो धोकर सट्टे लगा लगा कर, सटका लगा लगा कर उसको स्वच्छ करता है। तो भगवान देह का जो भी जो आत्मा रूपी वस्त्र को स्वच्छ करते, पांच प्रकार की ड्रेस और व्यक्तवाणी 9 जनवरी 1980 9 जनवरी 1980 बाबा ने कहा पांच प्रकार की ड्रेस, इन पांच प्रकार की ड्रेस का त्याग करो और बाप तुम्हें जो ड्रेस अलौकिक ड्रेस देते हैं वो कौन कौन सी ड्रेस है और कैसे उस ड्रेस को पहनने के वजह से आत्मा मलिन हो गई है और दुख की चर्चा करें। सबसे पहली है मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनो, अर्थात देहभान और देह अभिमान की ड्रेस। और देहभान और देह अभिमान बहुत सूक्ष्म, तीन शब्द है, एक देहभान, एक देह अभिमान, एक देह अहंकार। देह अहंकार, देहभान, देह अभिमान, सबसे सूक्ष्म देहभान, उसके ऊपर देह अभिमान है और उसके ऊपर देह का अहंकार। देह अहंकार अर्थात मैं अमीर हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, व्यक्ति कहता है और दूर से दिखाई देता है, ये बहुत अहंकार है। जैसे उदाहरण के रूप में दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ है, बाकियों को शूद्र समझता है। दूसरा है देह अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, मैं गाता बहुत अच्छा हूं, रोने धोने अग्निपथ है, और दूध किसी ने ठीक एक कुमार रोते रोते हमारे पास आया था ओपड़ी में, कहने लगा मधुबन में टोली दे रहे थे, वो भी जाके खड़ा हो गया और जैसे उसका नंबर आया किसी ने कह दिया तुम मधुबन निवासी नहीं हो हटो, फील हो गया, बहुत दुख हुआ और रोने लगा। कोई माता 2 मास सेवा की, 3 मास सेवा की, जाने का समय आया तो किसी ने हंसी में कह दिया अच्छा खाए पिए और जल्दी, फील हो गया, दर्द हो गया। कोई आए और जाने का दिन था नहीं गए और ज्यादा दिन रुक गए, या धर्मशाला समझ के रखा है कि, बहुत दर्द हो गया, बहुत फील हो गया, बुरा लगना, फील बैड। यहां तो बहुत कुछ सहन करना, छोटी छोटी बात में उदास, नाराज, मूड ऑफ, किसी मुरली में था मूड ऑफ के गरम गरम आंसू बहाते, अव्यक्त महाभाग के इन्वर्टेड कॉमा, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, क्या करो, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। हमारे पास उधर एक बहन है, वो कहती है हमारे आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप दे उसको सुखाने का, कितनी रोने की आदत है, बात बात में रोना, बात बात में कंप्लेन, बात बात में नाराजगी, बात बात में मूड ऑफ, उदास हो जाए, और उदास होने का कारण दूसरा व्यक्ति भी बहुत कम है, खुद ही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को टारगेट बनाना और खुद ही पर तीर चलाना, उल्टा खुद ही को दुखी करना, कारण स्वयं है, किसी ने कुछ कहा नहीं, कहा किसी ने कहा पर उसको लगता है मुझे डांटा, किसी ने समझाया उसको लगता है मेरी इंसल्ट की, कोई क्यों तुम्हारी इंसल्ट करेगा, और दूसरों का व्यवहार संशयास्पद लगता है, व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड करता है, गलत ढंग से देता है, और सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को, खुद ही का शिकार खुद करता है, वो भी देहभार है। भोजन को देखा हमारे पसंद की सब्जी नहीं है, मूड ऑफ, आज भोजन, आज भूखी नहीं, भोजन ठीक नहीं है तो आज भूख नहीं, जैसे मधुबन चलता है, चोरी करना, चीजों को उठा देना, दूसरों की बातें सुनना, सूक्ष्म अहंकार, हमने ये सेवाएं दी, हम ऐसे ऐसे हैं, हम भी कुछ कम है क्या। एक बहन वो कहती है कि मैंने ऐसी सेवाएं की और फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्ची ये सब तो मैं कर रहा था तुमने क्या, वे भी कहा संत युग पर चुप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, हम निमित्त मात्र है केवल बस, और हमको निमित्त बनाया गया ये भाग्य है, नहीं तो हमसे योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है संसार में, हम ऐसा है कि किसी किसी गांव में से एक ही आत्मा निकली, एक आत्मा उसका काम है, वो अनपढ़ है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, उसका काम है यहाँ की फाइल वहां और वहां की फाइल वहां, यही काम है उसका, और कोई ज्यादा काम नहीं। तो एक बार कोई टॉपिक पर और सब अपनी अपनी पॉइंट्स बता रहे थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, सारी पॉइंट पूरी हो गई, उसको हमने पूछा कि आपके पास कुछ पॉइंट है क्या, उसने ऐसी एक बात बता दी इतनी गहरी जो किसी ने सोची भी नहीं, और उसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, मुरली सुनता है केवल, वो भी थोड़ी सी, किसी गांव का है, उसको भगवान ने चुन लिया, कैसे कैसे कुछ ज्ञान सरोवर में एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर आए थे, पुलिस के ड्रेस में नहीं थे, सिविल ड्रेस में, सूट बूट, तो एक माता ने उनको प्रदर्शनी समझाई, म्यूजियम, और वो म्यूजियम समझाने के बाद वो माता तो अनपढ़ माता थी, और म्यूजियम समझाने के बाद वो जो कमिश्नर साहब थे वो भाई प्रश्न पूछने लगे, ये शिव बाबा क्या है, ये क्या है, इसको क्यों भगवान मानते हो, ऐसा क्यों करते हो, ये परम धाम रहता है क्या कुछ वगैरह वगैरह। तो उस माता ने थोड़े देर तो सहन किया और फिर उसको ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक, दिखने में तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो पर इतना भी नहीं समझता भगवान कौन है। बस वो बात तो एकदम तीर की तरह चुप गई कि पढ़े लिखे दिखते हो भगवान कौन है इतना भी नहीं तुमको समझता। उन्होंने जाके फिर कोर्स किया और फिर ज्ञान में आए और फिर ये अनुभव सुनाया कि मैं जो ज्ञान में आया उस अनपढ़ माता की खोज में वो पता नहीं कहां चली गई, किसको किसको भगवान ने चुन लिया। ऐसे ही मनमोहिनी, मनमोहिनी बन देखा है ना शांति, बहुत एसपी आए थे कभी और उनको इधर आना था ट्रांसपोर्ट में, जाने का बस नहीं थी, लेट थी, चलो मैं आपको ले चलता हूँ, कल का आपने का जो डंडा है उसमें बिठाया उसको और लेके आया उधर से इधर, पीछे सामान कौन, बहुत बड़े ऑफिसर थे एसपी थे कहीं के। तो भाई ने कहा कि मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन, नहीं तो बाकी हमारे डिपार्टमेंट के सब पुलिस ऑफिसर सब मुझसे डरते हैं, साफ साफ साफ, और ये भाई डंडे पे बिठा के ले आ गया भगवान को, कैसे आत्माए बसंत निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण राम जी की शरण में आता है, सब लोग कहते हैं इसको नहीं लेना, शायद कोई स्कीम है, प्लॉट, कोई षड्यंत्र रावण का है, तो असुर आखिर इसको शरण में नहीं लेना, पर राम जी कहते हैं कि ये सच्चे दिल से मेरी शरण में आया है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे जो निर्मल मन वाले है वो मुझे प्रिय है। मोहि कपट छल छिद्र, जो कपट करते हैं वो मुझे प्रिय नहीं, जो छल करते हैं वो मुझे प्रिय नहीं, छिद्र करने वाले, छिद्रान्वेषण करने वाले, दूसरों के दोष देखने वाले मुझे प्रिय नहीं, जो सच्चे है, जो पवित्र है, केवल मुझे वही प्रिय है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द गॉड किंगडम ऑफ गॉड, वो धन्य भागी है जो शुद्ध है, जो पवित्र है, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। तो देह भान रहित चेतना, जिसको अभिमान है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, किस बात का अभिमान और किस बात का अहंकार। हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ ऊपर से आ रहा है, जो ज्ञान की धारा बह रही है ऊपर से बह रही है, हम नल मात्र है। तो देखो पहला कपड़ा, फर्स्ट ड्रेस जिसका त्याग करना है वो कौन सा है, मिट्टी का ड्रेस, ये ड्रेस नहीं पहनना है, भगवान इसी को धुलाई करने आए हैं, धोने आए हैं साफ कर। दूसरा बदबू वाला ड्रेस, स्मेल, अव्यक्तवाणी 9th January 1980, अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार, मुरली का टाइटल। दूसरा ड्रेस बदबू, कौन सी बदबू, देह और देह के संबंधों में लगाव, ये बदबू, शरीर में और शरीर के संबंधों में लगाव, हमारे जो भी संबंध है, पति पत्नी बच्चे साथी मित्र, अगर ये सारे संबंधों को हम भगवान के सामने रखे अभी के अभी राइट नाउ, तो क्या भगवान इस संबंध को स्वीकार करेगा, स्वयं से प्रश्न पूछे, या रिजेक्ट कर देगा कि इस संबंध में शरीर हार, लगाव है, विकार है, काम वासना है, रिजेक्टेड। भगवान कहेगा मुझे तो बदबू आती है तुम्हारे इस समय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय परिवार में केवल एक ही संबंध है, भाई बहन या तो केवल भाई भाई, बस, और दूसरा कोई संबंध नहीं। इतनी सारे सेंटरों पर हमने देखा है, सेंटर की बहन जी बैठी है और उनके ही लौकिक माँ बाप वहां बैठे हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि ये इनकी बेटी। इतना नष्ट हो, इतने डिटैच्ड, सेंटर वालों को भी नहीं पता कि ये इसके पिताजी। ऐसे रूहानी संबंध में पांच लोग जिसमें काम नहीं, वासना नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत अटैच है दो व्यक्ति के, और जिस जिस संबंध में अटैचमेंट है, लगाव है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा मेरी पत्नी, जहां मेरा आ गया वहां अधिकार आता है, मेरा इस पर अधिकार है, मालकियत, ये प्रेम नहीं वासना। प्रेम निर्मोही, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम सामने वाले व्यक्ति को मुक्त करता है और वासना सामने वाले व्यक्ति को गुलाम बनाती है। वासना ही काम की इच्छा है कि मैं मालिक और ये गुलाम, इसका शरीर मेरा है, इसकी सोच मेरी, मैं इस पर मालकियत करूंगी, सोच को भी गुलाम बनाना चाहते हैं दूसरों की। परंतु प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम तो मुक्त करता है, प्रेम बंधन नहीं डालता, प्रेम में पजेसिवनेस नहीं है। प्रेम ये नहीं कहता कि तुम वो करो जो मैं कहता हूं, वासना कहती है तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूं। बहुत अंतर काम और प्रेम। दूसरा ड्रेस है बदबू वाला ड्रेस, जिसमें अटैचमेंट है, आसक्ति है, मोह, मोह के धागे, मोह है। मूल्यों में आया था कुछ समय पहले, जून मास की मूल्य, मम्मा डे की, उसमें एक वाक्य था, बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारी मम्मा चली गई। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा 1965 मम्मा ने शरीर छोड़ दिए। सभी रोने लगे, दुख हुआ सबको, बाबा हमारी मम्मा गई। बाप कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाओगे। मम्मा गई ना, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी जाओगे। मिलाप करना, दुख करना, जितना गहरी आसक्ति होगी, वो व्यक्ति जब जाएगा तो उतना गहरा दुख होगा। जितनी चेतना नष्ट मोहा होगी, किसी के आने से और किसी के जाने से दुख नहीं। आओ तो बहुत अच्छा, जाओ तो भी अच्छा। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। और जिससे बहुत लगाव है वो यदि बिछड़ता है, बहुत बहुत पीड़ा होती है। इसके लिए देख लेना, अभ्यास करना, योग में भी सब नष्ट हो रहा है। दादियों को बाबा ने अभ्यास कराया था, नीचे लेट जाओ, ऊपर कफन, मर गए। महात्मा बुद्ध आधी रात को जब घर छोड़ कर गए, सारथी चलना था, रथ में जाने लगे, रथ रोका, बाल काट दिए और चन्ना से कहा कि अब तुम जाओ, मैं नहीं हूं। तो चन्ना ने कहा, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, ये तुम्हारा राजप्रसाद, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, एक बार तो देखो, इतना वैभव, इतना साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य किसको मिलेगा, तुम सम्राट बन जाओगे, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। महात्मा बुद्ध देखते और कहते, मुझे केवल आपकी लपटे दिखाई दे रही है, बस, सब कुछ भस्म हो रहा, और कुछ नहीं, केवल आग। तो जितना संबंधों में लगाव होगा उतनी पीड़ा होगी, जितनी आसक्ति होगी इतनी ज्यादा अपेक्षाएं, और साइकोलॉजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, दो व्यक्तियों के बीच डिस्टेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि बीच बीच में थोड़ी देर मौन हो जाए, कुछ दिनों के लिए अलग हो जाए, ताकि दूसरे व्यक्ति जो हमारे साथ रहते हैं उनको भी सोचने का मौका मिले, पर्सनल स्पेस मिले। जो भी साथ में रहते हैं उनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, अगर डिस्टेंस नहीं दुखो। तो दूसरी ड्रेस कौन सी है? रत्तू वाली ड्रेस। तीसरी ड्रेस है चमड़ी वाली ड्रेस, देह रूपी चमड़ी को देखना, ये ड्रेस। बाबा ने कहा इस ड्रेस को त्याग दो, शरीर को देखना, ये बहुत सुंदर है, ये असुंदर, ये काली है, ये गोरी है, शरीर को देखने क्या भरा है इसमें, अच्छा बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, जितना ही सुंदर लग रही है शरीर, जाओ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल हो गए लेके आऊंगा, जो टीबी वाले पेशेंट्स होंगे, वो जो डायलिसिस वाले पेशेंट होंगे, वो जो कैंसर के मरीज होंगे, वेयर इज द ब्यूटी, कहां है शरीर का सौंदर्य, इतना ही सुंदर है ना, इसी के पीछे तो संसार पागल है, शरीर बीच में है और सारा संसार उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सारी फिल्में, सारी किताबें, सारा मीडिया, सारी मैगजीन, सारा फैशन इसके इर्द गिर्द है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हे अर्जुन साक्षी होकर देख, जन्म जन्म मृत्यु को साक्षी होकर देख, दर्द है, जरा व्याधि बुढ़ापा साक्षी होकर देख, बुढ़ापा क्या होता है, अभी जो इतना सौंदर्य है बुढ़ापे में कहां है सौंदर्य, दांत गिर गए, खा नहीं सकते, कान से सुनाई नहीं देता है, दिखता नहीं आंखों से, छुरियां पड़ गई है, झुक झुक के चल रहा है, और बीमारी जितना भी सुंदर हो बीमार होने पर कैसे हो जाए, सौंदर्य ब्रह्म मात्र, शरीर का सौंदर्य ब्रह्म है, ब्रह्म वास्तविक सौंदर्य शरीर के नहीं, चेतना। और संसार आज जिसको प्रेम कहता है वो प्रेम है ही नहीं, लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, और आज का जो प्रेम जिसको वो लोग प्रेम कहते वो प्रेम नहीं, वो तो वासना है, अपनी वासना को प्रेम की संज्ञा दे रहे, व्याकरण ही बदलने की आवश्यकता है, व्याकरण में त्रुटि है, लगाव है, आसक्ति है, मोह, पर कहते हैं हमारा प्रेम, प्रेम का तो उन्हें खबर ही नहीं है प्रेम किसे की। तो तीसरी ड्रेस कौन सी है? चमड़ी वाली ड्रेस, चमड़ी को देखना, चमड़ी की ओर आकर्षित होना, चमड़ी को स्पर्श करना, इसको हाथ लगाओ, मुरलियों में आता है किसी को देखा भाकी पहने, सब विकारों की तरफ जाने वाला, इन सभी तृष्णाएं और सांसारिक इच्छाओं की व्यर्थता को देखना और मुक्त होना, मार्ग क्या है? दमन नहीं, देखना उसे। महात्मा बुद्ध के पास यदि कोई संन्यास लेने आता था वो कहते थे जाओ शमशान घाट 3 मास वहीं रहो, क्या देखो? चिता को चिंते हुए देखो, रोज रोज क्या देखो? शरीर जल रहा है, आग की लपटें उठ रही है, कैसे बचा पाओगे स्वयं को वैराग से? एक दिन आ ही जाएगा, साक्षी होकर देखना, कोई अगर मरता है क्या करते, सब कुछ जल खत्म हो रहा है, शमशान ही वैराग, थोड़े समय तो आएगा, तो इससे मुक्त होना, काम क्रोध निमले ठाई चिंथाला स्वयमेव पांडुरंग। भक्त भक्ति करते करते इतना निर्विकार हो रहा है, काम क्रोध सब कुछ मिट रहा है और स्वयं भगवान जैसा जिसकी वो आराधना कर रहा है, धाला स्वयमेव पांडुरंग, खुद ही वो उसके जैसा हो गया निर्विकार। चौथी ड्रेस दाग वाली ड्रेस, धब्बे हैं जिसके ऊपर, और चौथी ड्रेस दाग वाली ड्रेस अर्थात दूसरों के अवगुण देखना, अर्थात स्वयं पर दाग लगाना, अवगुणी दृष्टि। कोई कहे ये भाई बहुत अच्छा योगी है, हाँ योगी तो है पर कल उनको हमने योग में सोते हुए देखा था। दूसरों के दोष अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि किसी में 9 गुण है और 1 अवगुण है तो बाप और बच्चों में अंतर यह है कि बच्चे उस अवगुण को देखते हैं और 9 जो गुण है उसको छोड़ देते, और बाप यदि किसी में 9 अवगुण है और 1 गुण है तो बाप किसको देखते हैं, उस गुण को देखते हैं, गुण ग्राही दृष्टि। पर हमारी आदत पड़ गई है कि हम अवगुणों को पहले देखते थे। कोई कितना भी अच्छा हो, हम इतने एक्सपर्ट हैं कि एक ना एक अवगुण हमको मिल ही जाता है। दूसरों पर हमने PhD की है और अपना खुद का ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं, और दूसरों पर हमारी क्या है, PhD। कभी मधुबन में भट्टी थी तो दादी प्रकाशमणि ने सबसे कहा था, आपके जो सबसे नजदीक वाला व्यक्ति है घर पे, यदि माता है तो पति, भाई है तो पत्नी, उसके 10 गुण लिखो। इतना मुश्किल हो गया सबको लिखना, सोच में पड़ गए, गुण है ही नहीं, कहां से लिखूं? अब क्या ये लिखूं कि इतने भगवान को जाना, और ये तो ठीक है। अगर कहते होते कि 50 अवगुण लिखो तो कितने लिखते, 100, फटाफट लेट उठता है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है, मुरली तो कभी कभी सुनता है, ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, योग में तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, सेवा में बहाने बनाते है, फटाफट 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 बिना सोचे फास्ट। इसके लिए ये भी अभ्यास करना है कि बैठकर उन आत्माओं के गुण लिखना जो हमारे एकदम नजदीक है। भक्ति मार्ग में हमारा गायन कौन सा था, कि हे प्रभु मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण, और ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में, ये जो आपके बच्चे हैं ना बाबा ब्राह्मण परिवार के, इनमें कोई भी गुण नहीं है, पता नहीं कैसे आपने इनको चुना, मुझे तो एक भी गुण दिखाई नहीं देता है, शायद गलती से चुन लिया। एक प्रश्न है, यदि बाबा आपसे कहे बच्चे मुझे तो जो आपके बाजू वाला था ना उसको चुनना था, गलती से तुम चुने गए, तो तुम्हारे घर में 2 लोग थे, तो जो तुम्हारा भाई था ना उसको चुनना था, गलती से तुमको चुन लिया, तो बाय मिस्टेक, मिस्टेक उससे होती नहीं है, पहली बात, वो अभूल का सागर है। भगवान क्या है, अभूल का सागर, उसकी महिमा में ऐड करना, निर्मोह का सागर उसकी महिमा में ऐड करना, मौन का सागर उसकी महिमा में ऐड करना, धैर्य का सागर उसकी महिमा में ऐड करना, अवगुण देखना अवगुणी दृष्टि, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। यदि हम अपने आंख बंद करें और लिस्ट निकालें, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके प्रति हमारे मन में कम सम्मान है, बहुत बड़ी लिस्ट निकली, क्योंकि हमको हमने देखा ही उनको ऐसी ऐसी करतूत करते हुए कि उनके प्रति निगेटिव भावनाएं हैं, निगेटिव फीलिंग्स। जैसे माता कहती है मेरा पति ज्ञान में आ जाए परंतु वो बहुत दारू पीता है, उसके प्रति शुभ भावना है कि वो ज्ञान में आ जाए, शुभ भावना है परंतु साथ में घृणा भी तो भाव है, नफरत करती है वो उससे, कैसे आएगा, नफरत का भाव है, साथ में ऊपर से है कि ये ज्ञान में आ जाए पर अंदर से बहुत नफरत। तो अपनी दृष्टि को क्या करना है, क्या सोचेंगे दूसरे के बारे में, पहले ब्राह्मण परिवार के बारे में, जो दूसरी आत्मा है चाहे कितने भी अवगुण हो पर उसमें 5-6 विशेषताएं तो है। कौन कौन सी? सबसे पहले भगवान को पहचान, ये विशेषता है ना। बड़े बड़े शंकराचार्य, तीर्थंकर, बोधिसत्व, बुद्ध, स्वयंवर, पैगंबर, ईश्वर पुत्र, अवतार, धर्मस्थापक, धर्मावलंबी, भक्त, योगी, सन्यासी, उदासी, वो नहीं जान पाए, किसने जान पी? विशेषता है ना। अवजानंती माम मुड़ा मानुषी तमाश्रित, हे अर्जुन मूर्ख मेरा उपहास करते, अवजानंती माम मुड़ा, मुझे जानते नहीं है वो। जब मैं साधारण वेश में संसार में आता हूं, पहली विशेषता क्या है? उसमें भगवान को जाना। दूसरी पवित्रता, उसने पवित्रता को धारण किया, पवित्रता के महत्व को समझा है कम से कम। चलो अमृत वेला नहीं करता, मुरली नहीं आता है, पर पवित्र तो है। जहां संसार में विकारों का वायुमंडल है, विकारों की वायु बह रही है, काम वासना है सब तरफ, वहां पर पवित्रता का चिंतन भी करना कितनी बड़ी बात है। तीसरी विशेषता, एक मुरली है पूरी इसके ऊपर, ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता, और कितना मुश्किल है पॉइंट्स निकालना। और क्या विशेषता है? उन आत्माओं को सामने लाओ जिसके प्रति हमारे मन में कम सम्मान, जिसको हमेशा स्टेज पर आगे आगे करते देखा है, सेवा कुछ करते नहीं पर नाम बहुत चाहिए, उसको सामने लाओ। क्या विशेषता है? समर्पण, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से समर्पण किया है, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, कैसे, इसलिए वो महान है। और क्या विशेषता है? अनेक जन्म जन्म की भक्ति की है तब जाके इस जन्म में भगवान उसको मिला है, साधारण आत्मा नहीं है वो, पता नहीं कितने जन्म उसने क्या क्या किया है। अभी अभी एक कन्या सेंटर पर आई है, ठीक है, अब सोचते हैं नहीं, पर क्या हमें पता है कि पूर्व जन्म में कैसी तपस्या करके वो आत्मा आई है, अभी अभी कैसी साधना उसने की होगी तब जाके अभी आगे, हमें किसी का कुछ पता नहीं। पर बाबा ने कह दिया, जन्म जन्म की भक्ति का फल देता हूं, अर्थात बहुत पुराने भुगत यहाँ आए, तो इसने बहुत भक्ति की, बहुत भगवान को ढूंढा है तब जाके इसको भगवान मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको चुना किसने? हमने भगवान को चुना या उसने हमको? उसने मंदिर में कौन गया था ढूंढने? उसने हमको चुना या हमने उसको चुना? क्यों हमने नहीं चुना? हमको इतनी भी तो अकल नहीं थी, उसको चुनना कैसे, ढूंढना कहा? जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई हैव चोजन यू, यू हैव नॉट चोजन मी, मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। ऑब्जेक्ट तो वाणी भी है, एक बाप ने तुम बच्चों को चुना है, तुमने बाप को नहीं चुना है। तो चौथी ड्रेस कौन सी है? गंदे दाग वाली ड्रेस। और पांचवी सबसे खतरनाक ड्रेस है, कौन सी होगी पांचवी ड्रेस? खून के धब्बे जिसमें लगे, रक्त रंजित, ब्लड स्टेन ड्रेस। और खून के धब्बे अर्थात बार बार विकर्म करना। ब्राह्मण बन गए, सारी मर्यादाओं का पता है, उसके बाद भी विकर्म। साकार महावाक्य है बाबा के, तुमको द्वापर से अब तक के जो पाप है उसको भस्म करने के लिए उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप को भस्म करने में लगता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में एक का एक गुण, ज्ञान में आने के बाद एक का 100 गुना, पाप और पुण्य दोनों। बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य किया और एक पाप कर दिया, हमारी वजह से कोई एक आत्मा ज्ञान छोड़कर ही चली गई, हमको देखकर बोझ हमारे सिर पर। आत्माओं के ज्ञान छोड़कर जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर यदि हमारी वजह से जाती है कोई बोझ हुआ, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी विकारों में जो गिरते, सौ गुनातन पदभ्रष्ट, पांचवी मंदिर से नीचे गिरे तो चकनाचूर, सब कुछ पता है जिनको, संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान जिनके पास है, उसके बाद भी जिनके द्वारा विकर्म कुकर्म पाप कर्म हो जाते हैं शरीर के द्वारा, वो जो है वो है रक्त रंजित ड्रेस पहनने वाले, खून के तब्बे है उस ड्रेस में। और यदि ऐसा पाप हुआ है ब्राह्मण बनने के बाद, तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्षमा, माफी। इस ड्रामा में माफी होती नहीं, पहली बात। हाँ, वो दूसरी बात है, अगर पाप हुआ हो तो पाप को सुना दो, बाबा कहते हैं बाबा माफ कर देंगे, माफी पर होती नहीं है, हल्के हो जाएंगे, जो जो जिसने किया है उससे छूट नहीं सकते, कर्मा रिटर्न्स, कर्म का सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो सफल चाखा, ये संसार कर्म प्रधान है, भगवान कर्म फिलोसॉफी में इंटरफियर नहीं करते, जिसने जो कुछ पाप किया होगा उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, भगवान बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते। हाँ, सच्चे दिल कर दिल से प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो, तो शायद हल्के हो जाएंगे, पर क्षमा नहीं होगी, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, जो कुछ किया है, किसी को दुख दिया, किसी को तड़पा तड़पा कर मारा, मानसिक यातनाएं पहुंचाई, और वो जो थी किसी पर झूठा इल्जाम लगाया, वो ब्राह्मण आत्मा थी, किसी को रुला दिया, वो ब्राह्मण आत्मा, षड्यंत्र किए, कटु शब्द बोले, बाबा ने कहा सबको दुआए दो, सबको सुख दो, ये श्रीमत है, परंतु फिर भी हमने कुछ और कर दिया, सबसे पहले तो माफी तो मांगी, पर सच्चे दिल वाली माफी, ऐसी नहीं कि माफी भी मांग रहे और फिर वही विकर्म कर रहे। एक अव्यक्त वाणी है, इन अक्टूबर 76 शायद, जिसमें बाबा ने कहा है थ्री पी, ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना, पाप, पश्चाताप, पार्डन, माफी, बार बार पाप करना, फिर पश्चाताप करना और फिर माफी मांगना बाबा से, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना के रखना, बाबा माफ कर दो हमसे पाप हो गया, बड़े बड़े लेटर बाबा को, लेटर लिख लिया फिर से पाप, माफी मांग ली फिर से पाप, प्रायश्चित होना चाहिए, पश्चाताप नहीं, दो शब्द है, एक है पश्चाताप, एक है प्रायश्चित। पश्चाताप में व्यक्ति कहता है मैं गलत हूं, मैंने गलत किया, पर हो सकता है फिर गलत करे, प्रायश्चित अर्थात मैं ही गलत हूं, प्रायश्चित अर्थात जैसे राम महाभारत में दिखाया है, द्रौपदी कहती है दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा, उसके बाद एक दृश्य, युधिष्ठिर द्रौपदी के पास आता है और कहता है क्या तुमने ऐसा कहा अंधे का पुत्र अंधा, वो कहती है हां मेरे से पाप हो, क्योंकि उस समय दुर्योधन अतिथि था, एक वो अनुज था छोटा था, और उनके जो ज्येष्ठ पिता थे उनका बेटा था, तीन कारण, उसके लिए वो कहता है युधिष्ठिर कि क्या तुमने ऐसा कहा, वो कहती हां मैं इसके लिए पश्चाताप करने को तैयार हूं। युधिष्ठिर कहता है तुमने जो कहा इसका पश्चाताप नहीं, सजा है और वो भुगतनी पड़ेगी। हर पाप का पश्चाताप नहीं होता, कुछ कुछ अपराध की क्या मिलती है, सजा। यदि ब्राह्मण बनने के बाद जो बड़ी बड़ी श्रीमत है एकदम टॉप मोस्ट, उसमें ही यदि गड़बड़ है, जैसे इस यज्ञ में सबसे बड़ी श्रीमत है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, यदि ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है बार बार, तो ये क्या है, ये कर्म। बच्चे बाप से कहते हैं बाबा, हमारे माँ बाप कहते हैं शादी करो, क्या करें? बाप कहते हैं क्या, साकार मुरली। बच्चे बाप से कहते हैं बाबा, हमारे माँ बाप नाराज होते हैं, कहते हैं शादी करो। कुमारिया बाप से पूछती है, कुमार बाबा से पूछते हैं हम क्या करें? बाप कहते हैं सिर भी कट जाए, पवित्रता होना छोड़ो। इस यज्ञ में जितना माताओं ने सहन किया, कुमारियों ने सहन किया, यज्ञ के शुरुआत में किस लिए सहन किया, किस लिए, पवित्रता के लिए। इतना कुछ शारीरिक यातना सहन की किस लिए, पवित्रता के लिए। यदि उसी सब्जेक्ट में फेल है तो क्या है? हम बाबा के सामने ऐसे विकर्म लेकर जाए तो बाबा कहेगा आउट। व्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003, बहुत सारे सेंटर्स पर ये मुरली लगी हुई है, बाबा धर्मराज बोर्ड और बाबा के महावाक्य, देखा होगा ना, 15 नवंबर 2003, अव्यक्त वाणी, सबसे पावरफुल मुरली पवित्रता पर। पवित्रता अपवित्रता अर्थात सफेद कागज पर काला दाग, ये मत कहना थोड़ा सा हमसे हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। सुनो, कान खोल के सुनो, दोनों ही कान खोल के सुनो, ये बाबा के महावाक्य है। ब्रह्मा ने जो कितना सहन किया किस लिए सहन किया, पवित्रता के लिए सहन किया। इतनी सारी माताओं ने सहन किया किस लिए सहन किया, पवित्रता के लिए सहन किया। और जब सारे मार्ग बंद हो जाए फिर भी सामने वाला व्यक्ति राजी नहीं है पवित्रता के लिए, एक ही मार्ग है, छोड़ दो उसको, सेपरेशन। सब कुछ कोशिश करिए, सारे दरवाजे बंद हैं, किसी देहधारी को हम अपना शरीर नहीं सौंप सकते। ये शरीर किसके लिए, भगवान के लिए। जगदीश भाई जी कहानी सुनाते थे, शायद आपको पता होगी, एक कन्या कुएं पर पनघट पर पानी भर रही है, एक कुमार वहां से आता है, वो कहता है प्यास लगी है पानी दो, वो कन्या कहती है पानी मैं दूंगी, एक शर्त है अंग से अंग ना लगे, और वो उसको पानी देती है, वो पानी पीता है, चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी उनके माँ बाप उनको बिना पूछे करा देते, उनको पता नहीं किसके साथ शादी होगी। और शादी के बाद दोनों आमने सामने आते, वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, क्या कहती है, अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, शरीर मिट्टी, इस मिट्टी में इतने जन्म डूबे रहे, इस मिट्टी से बाहर निकलना, मिट्टी के खेल से बाहर निकलना, धब्बे वाला ब्लड स्टेन ड्रेस। तो कितने हो गए, 5। पहला कपड़ा मिट्टी का, सॉइल, 5S है, पहला मिट्टी वाला, सॉइल इंग्लिश में, अर्थात देहवान देहाभिमान देह अहंकार। दूसरा बदबू वाला, स्मेल, S, सेकेंड S, स्मेल, कौन सी बदबू? लगाव। लगाव को बाबा ने किस श्रेणी में रखा? बदबू। हम भगवान के सामने जाए और हमारे सारे संबंध भगवान के सामने रखे जाए, उसमें से सुगंध आए रूहानी ईश्वरीय। महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे 1930 और वहां पर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी उनके साथ थी और वो अपने पत्नी को कहते थे बा। तो मंच संचालक को लगा उनकी माँ है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया आज हमारे बीच में महात्मा गांधी आए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है साथ में उनकी माँ भी आई है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे महात्मा गांधी। और जब उनके भाषण का टर्न आया तो उन्होंने कहा, एकदम सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी माँ है। लौकिक संबंध, पति पत्नी का संबंध, दैहिक संबंध रूपांतरित हो चुका है, पवित्र संबंध बन गया, पवित्र रिश्ता, प्योर रिलेशन। अब उसमें शरीर की वो वासनाएं नहीं रही, वो सब चली गई। तो दूसरा ड्रेस बदबू, इसमें तीसरा दाग, स्टेन, स्टेन इंग्लिश में कहते हैं स्टेन। थर्ड एस दाग है, अवगुणी दृष्टि। चौथा चौथा धब्बे, धब्बे दाग। तीसरा कौन सा था? चमड़ी, स्किन। तीसरा स्किन, इस चमड़ी को देखना, ये गोरा है तो उसके पीछे काला है या अच्छा नहीं है, चमड़ी को देखकर डिसीजन। हमारा एक लौकिक दूर का भाई था, उसको एक बीमारी थी सोरियासिस, चमड़ी की बीमारी। आयुर्वेदिक इलाज कराया, एकदम ठीक हो गया, पूरा चला गया चमड़ी। उसी पीरियड में उसकी शादी कर दी और शादी के बाद वो बीमारी फिर से आ गई, उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दी, कोर्ट केस कराई। हमारा अपना दूर का एक भाई, और बाद में उसने आत्महत्या कर दी, मर गया। इतना हर्ट हुआ, किसको देखते हैं लोग, शरीर, इससे डिसीजन लेते हैं। चौथा स्टेन, वैक्स स्टेन, गंदे दाग। और पांचवा ब्लड स्टेन, स्टेन ब्रैकेट में ब्लड, 5S, पांच प्रकार के ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो अभी हम योग का अभ्यास करेंगे, इसमें ये जो पांच कपड़े हैं, पांच ड्रेस है, इस पृथ्वी पर पांच समुद्र है, 5 ओशन। एक एक ड्रेस एक एक समुद्र में जाके डाल देंगे। पहला हिंद महासागर, भारत और अफ्रीका के बीच। दूसरा अटलांटिक महासागर, अफ्रीका और उधर अमेरिका के बीच। तीसरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा। चौथा आर्कटिक महासागर जो ऊपर है। और पांचवा दक्षिण महासागर। फरिश्ता रूप में जाना है और एक एक ड्रेस को एक एक सागर में डाल के आ जाए।